हरे कृष्ण। तो पिछले दो दिनों में हमने दो तीन दिनों में हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। जैसे ही महाराज परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से तो तुरंत महाराज युधिष्ठिर ने जातक कोविद जो बड़े जातक या लग्न देखकर पूरे भविष्य बताने में निष्णात थे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। धौम्य कृपा आदि लोग आशीर्वचन दिए और तत्पश्चात ब्राह्मणों को प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि क्या मेरा पौत्र ये वंशधर क्या इस वंश के चलाने में योग्य होगा। महान राजा जिस इस वंश में हुए हैं भरत वंश इसमें क्या ऐसा योग्य व्यक्ति बनेगा या नहीं। और इसके उत्तर में ब्राह्मणों ने पहले बताया कि इसका नाम विष्णुरात होगा क्योंकि भगवान विष्णु ने साक्षात आकर इसे बचाया। और ये भी बताया कि किस प्रकार से बड़े बड़े महान भक्त राजर्षि जो इस परंपरा में आए हैं इनके सारे अच्छे गुण जो हैं इसके अंदर होगा परीक्षित के अंदर। महाभाग महाभागवतो महान, ये इतना सौभाग्यशाली है कि ऐसे वंश में आया है और क्योंकि ये महाभागवत है इसके अंदर सारे अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे। युधिष्ठिर महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट किया दान देकर सोना गांव गाय इत्यादि और पूर्ण रूप से वो ब्राह्मण तृप्त होकर अपने अपने घर पधारे। अब युधिष्ठिर परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों को कह रहे हैं अंत में ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि ये जो लड़का होगा आपका ये जब पूर्ण नवयुवक अवस्था में होगा तब उसे एक ब्राह्मणों का शाप लगेगा। ब्रह्मपुत्र के शाप से इसका मृत्यु का नोटिस दिया जाएगा और पर ये महाभागवत होने के कारण महान भक्त होने के कारण उसको भी एक तथाकथित दुर्भाग्यशाली स्थिति को भी सौभाग्य में परिवर्तन कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेगा उस परिस्थिति में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि हाउ टू टर्न मिसफॉर्चून टू गुड फॉर्चून। ये भौतिक संसार का नियम है पदम पदम भी पदम, हमेशा कुछ ना कुछ दुर्भाग्यशाली चीज होते रहते हैं हमारे योजना के विरुद्ध, पर उस स्थिति को सौभाग्यशाली कैसे बना जाए श्रवणम और कीर्तनम जारी रखने से, बाय प्रैक्टिसिंग हियरिंग एंड चैंटिंग। और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ये दो तत्व जो हैं नवदा भक्ति के जो प्रथम दो महत्वपूर्ण तत्व इसके स्वरूप हैं। वो परीक्षित महाराज ने अपना जीवन सफल किया श्रवण से और सुखदेव गोस्वामी ने अपना जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की कीर्तनम से कीर्ति भगवान के कीर्तिगान से। तो नवदा भक्ति है नौ के नौ बड़े सौभाग्य बहुत अच्छे हैं उनमें से कुछ भी कुछ उसमें से चार पांच भी करेंगे तो अच्छी बात है, एक भी कर अपना जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की जा सकती है कई जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रवणम कीर्तनम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो और उसके तात्पर्य में दूसरे जगह कहते हैं प्रभुपाद, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन इज अटेन्ड बाय सच सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नॉट अदरवाइज। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति जो जीवन का प्रथम उद्देश्य है वो ऐसी गंभीर श्रवणम और कीर्तनम से हो सकता है, उसके अलावा नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। श्रवणम कीर्तनम बहुत सिंपल है, चुपचाप बैठ सकते हैं बस, और कीर्तन नाम जप करना, पर द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी जो प्रामाणिक व्यक्ति है वो इसको वांछित फल जो है उसको प्राप्त कर सकता है। भले प्रोसेस बहुत सरल है पर प्रभुपाद कहते हैं प्रोसेस इज सिंपल बट वी आर नॉट सो सिंपल। हम अपने जीवन को इतने कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो फिर वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न, परीक्षित महाराज को मां के गर्भ में भगवान ने रक्षा की, तो अब इतनी बड़ी मृत्यु अभी क्यों रक्षा नहीं किया, संरक्षण क्यों नहीं कर रहे, कोई प्रश्न पूछ सकता है। और प्रभुपाद जी इसके भी उत्तर देते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनके अंदर वो योग्यता भी थी कि वो शाप को परिवर्तन कर सकते थे, बदल सकते थे, या उसको उसको उसके प्रभाव से वो निकल सकते थे, उनके अंदर वो ताकत थी, पर पूर्ण रूप से वो कृष्ण के आश्रित थे और उन्हें विश्वास था मारे कृष्ण राखे के, नहीं तो मां के गर्भ में किसी ने अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कौन बचा सकता उसको, और राखे कृष्ण मारे के उधर हो गया, अभी मारे कृष्ण राखे के, अभी कृष्ण ही अगर कुछ करना चाहते हैं उन्हीं की यही इच्छा है तो मैं क्या करूं, ठीक है उस समय ब्रह्मास्त्र से बचाया तो अभी ब्रह्म शाप से भी बचा सकते कोई तकलीफ नहीं है, तो बोले ठीक है पर मेरी ओर से मेरी तैयारी चालू होना है। तो उन्होंने अपनी ओर से अपनी तैयारी की और वो क्या, उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर गए और बोले पूर्ण रूप से मैं भगवान का आश्रय लेना चाहता हूं श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। तो भक्ति क्या है, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इस भौतिक संसार में भक्ति करने का मतलब है भगवान के साथ जो हमारा दिव्य रिश्ता है उसको स्थापित रखना। तीन चीज सत्य है, भगवान सत्य है, भक्त नित्य है, भगवान नित्य है, जीव नित्य है, और जीव के साथ भगवान का जो संबंध है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये तीन नित्य है और सब नश्वर है। तो भक्ति का मतलब है भगवान, भक्त और भक्ति, यही तीन चीजों नित्य है। तो उस स्तर पर जब स्थित हो गए, भगवान के साथ हमारा संपर्क बना रहा तो फिर भक्ति यशस्वी है। अगर वो संबंध नहीं है इसका मतलब वो निष्फल हो गया। तो महाराज परीक्षित ने ही मेड द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन, लिखते बैड बार्गेन, एक मृत्यु का घोषणा मिल गया पर उसको भी उन्होंने पूरा फायदा उठाया उस स्थिति में। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं दुर्भाग्य से दुर्भाग्यशाली स्थिति में भी अगर भगवान का स्मरण हो तो दुष्करम सुकरम भवेत, मुश्किल से मुश्किल चीज बहुत सरल हो जाता है भगवान का स्मरण हो, और सरल से सरल चीज बहुत मुश्किल हो जाता है अगर भगवान का विस्मृति हो जाए। सरल से सरल चीज, कोई भी चीज, छोटा काम कोई भी कर सकता है पर होता ही नहीं हमारे हाथ से अगर भगवान की विस्मृति हो जाए, और मुश्किल से मुश्किल चीज जो कोई नहीं कर पाता है बड़े आसानी से हो जाता है अगर भगवान का स्मरण। तो एक्चुअली भगवान का स्मरण जो है महत्वपूर्ण दिया गया है। और इस तरह से उस परिस्थिति को भी भगवान की कृपा के रूप में देखकर उन्होंने अपनी योजना जो अपना जो ओर से जो चेष्टा है اس کو جاری رکھے اور اس طرح سے سفل کیا. اور دوسرا چیز, تیسرا چیز پربھوپاد اس سندربھ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے شکدیو گوسوامی سے دھیان سے سن کر اکتو بھیم, بھے سے مکت ہو گئے. اور پربھوپاد جی اس کے تاتپریہ میں لکھتے ہیں کہ پورا سنسار جو ہے بھیبھیت ہے, اور بھے کا دوسرا سوروپ ہے چنتا. ہمیشہ ویکتی چنتت رہتا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے. وہ چنتا جب بھوتک سے نکال کر آدھیاتمک میں لگا دیا جائے اس کو کہتے بھکتی, اور تب ہمارا جیون سفل ہے. چنتا تو کرنا ہی ہے سب کو, تھوڑا بہت تو چنتا رہتا ہی ہے, اس کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, 100% ہمیشہ ٹینشن چنتا رہتا ہے. اور چنتا کو ایسا نہیں کر سکتے ہم, ہم تو شکدیو گوسوامی جیسے نہیں ہیں کہ سب کپڑے کھول کے جو ہوا ہو گیا بس ایسے چلتے رہے, ہم اس طرح پر نہیں ہیں. برہم بھوت پرسنا آتما, ہم اس طرح پر نہیں ہیں. اور وہ کرتنم ستر ہے. بعد انتتا یشودا مائی ہمیشہ چنتا میں رہتی ہے, کہاں گیا ہے میرا کانا, کیا کر رہا ہے پتا نہیں, کوئی بندر آ کے اس کو ایسا کھروچ لے گا, ہمیشہ چنتت رہتی ہے. دودھ اچھا سے بننا چاہیے, مکھن اچھا سے بننا چاہیے, نہیں تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو چنتا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, پر بھوتک روپ سے جب ویکتی چنتا کرنے لگتا ہے ہمیشہ وہ بھیبھیت رہتا ہے. پر نربھیا بجہ رے من شری نند نندن ابھے چرنا اروندرے, تو چنتت رہتا ہی ہے ہمیشہ, بھکت بھی ہمیشہ چنتت کرتے رہتے. پربھوپاد جی کی بہت ساری چنتا تھی, یہ جہو کا مندر بننا چاہیے, بن کیوں نہیں رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے, پرچار کیسے ہو رہا ہے, کسی کا کوئی تکلیف ہو رہا ہے, کوئی بھکت کا تکلیف ہو رہا ہے, ہمیشہ چنتت تھے پربھوپاد کہ وہ سینٹر میں ان لوگوں کو میں ایسے چھوڑ کے آ گیا ہوں, ڈی ٹی اسٹیبلش کر کے آ گیا ہوں, ان کو تو پوجا کرنا بھی نہیں آتا. گونیتا کو بولے آپ دیکھو بیٹھا تو دیا ہوں, آپ ہی ان لوگوں کو سکھاؤ کیسے آپ کی سیوا کرے, میں تو کر کے آ گیا ہوں, کیونکہ آپ کا آ گیا ہے میں کیا کروں, پرتھوی تیار چل جاتا میں تو کر دیا, اب آپ ہی سنبھالو اس کو کیسا کرے. تو ہمیشہ چنتت رہتے تھے وہ, ان کی یہی چنتا تھی کہ بھگوان کی جو چنتا ہے, بھگوان کو کیا چنتا ہے, بھگوان کو بھی سر درد ہے. بھگوان کا سر درد یہ ہے کہ جیووں کا ادھار کیسے ہو, اور بھگوان کی چنتا کو دور کرنے کے لیے گوپیاں, بھگوان کو ایک بار سر درد ہو گیا تھا, اور سر درد کو دور کرنے کے لیے گوپیاں اپنا دھول, چرن کا دھول سر بھگوان کے سر پہ چڑھا کر نرک جانے کے لیے تیار تھی. اسی طرح سے چیتنیہ مہاپربھو کا بڑا سر درد تھا, انہوں نے ہریداس ٹھاکر کو پوچھا میرا سر درد یہی ہے, دیویہ سر درد, کہ بودھ جیووں کا ادھار کیسا ہوگا جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. ہریداس ٹھاکر نے بولا کوئی چنتا مت کرو پربھو, آپ نے جو طریقہ دیا ہے نا ہری نام سنکیرتن, وہ کرنے سے سب کا ادھار ہو جائے گا. بولے پیڑ پودوں کا کیا ہوگا, نہیں نہیں نہیں, جب ہم لوگ جور جور سے ہری نام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ریفلیکشن آتا ہے, مطلب ایکو آتا ہے, وہ ایکو نہیں ہے, ایکچولی پیڑ پودے بھی گا رہے ہیں, وہ بھی ہری نام میں بھاگ لے رہے ہیں, ان کا بھی ادھار ہو جائے گا, آپ چنتا مت کرو. اور چیتنیہ مہاپربھو کی چنتا کو دور کرنے کے لیے ہریداس ٹھاکر نرک میں جانے کے لیے تیار تھے, نارکیہ استھتی, 22 مارکیٹ میں مارا گیا, اس کے لیے تیار تھے. اسی طرح سے بھکتی سدھانت سرسی ٹھاکر کی بہت بڑا سردرد تھا. بھکتی سدھانت ٹھاکر کا سردرد کیا تھا کہ پورے وشو بھر میں یہ ہرینام سنکیرتن کیسا پھیلے گا, اور اس کے لیے پربھوپاد جی نرک میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. کہاں رادھا گووند مندر, کہاں رادھا دامودر مندر, کہاں روپ گوسوامی کے بھجن ستھلی کے بغل میں بیٹھ کر 64 مالا جپ کرنا, فرسٹ کلاس سب کچھ ٹھیک تھا, پر بھکتی سدھانت سرسی ٹھاکر کا سردرد جو ہے تو اس کے لیے وہ نرک جیسے, مطلب برنداون کو چھوڑ کر نیو یارک گئے, نارکی استھتی, چاروں اور دارو پینے والے, مانساہار, نشا, جوا, ایسے بھی آلے لوگوں کے بیچ میں رہ کر. تو یہ سردرد ہے, اور پربھوپاد جی کا سردرد یہ تھا. پربھوپاد کا سردرد یہ ہے کیا تھا کہ یہ جو میں نے اسکون ستھاپت کیا یہ وشو بھر میں اچھا سے چلنا چاہیے, मैं तो चले जा रहा हूं, मैं बूढ़ा आदमी, मैं चले जा रहा हूं, पर मैंने जो बना के रखा है इसको बना के रखना और फैलाना, खत्म नहीं कर देना। ये सरदर था, और उसके लिए हमको थोड़ा नरक में जाने की जरूरत नहीं है, हमको उतना अपेक्षा भी नहीं किया जाता है, पर जो स्वर्गीय सुख है थोड़ा साइड में रख के तपस्या। तो ये चिंता, हाउ टू ओवरकम एंग्जाइटी, चिंता करना स्वाभाविक है, पर उस चिंता को अगर भौतिक से लेकर आध्यात्मिक में परिवर्तन कर दे तो वो चिंता भक्ति हो जाती है। हमेशा हम चिंता करते रहते हैं, इसका क्या होगा, इस भक्त का क्या होगा। दूसरों की चिंता करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, हम अपना चिंता करेंगे तो भगवान निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है तुम ही संभालो। पर हम भगवान के बारे में चिंता करेंगे तो भगवान हमारे बारे में चिंता करेंगे, बेचारा इतना मेरे बारे में सोच रहा है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, तो मेरे को उसके बारे में देखना पड़ेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तोम, जो अनन्य भगवान का चिंतन करता है तो उसका योगक्षेमम भगवान की चिंता हो जाती। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने उसको अब उस परिस्थिति को ये कर दिया, परिवर्तन कर दिया, भक्ति में परिवर्तन करके अपना जीवन सफल किया। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टुम् अनुध्यायन् परीक्षेत निरेश्विह। फिर कहते हैं परीक्षित महाराज, इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह वह निरंतर उस भगवान का चिंतन करता रहेगा। दूसरा, एक तो नाम विष्णुरात, दूसरा नाम परीक्षित। परीक्षित का मतलब यही है कि सबकी परीक्षा करता रहेगा, और यह परीक्षा में कभी सफल नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि वो भगवान को देखा हुआ है, और दूसरे ये भगवान ऐसा थोड़ी, ये इतना सुंदर नहीं है, ये इतना यशस्वी नहीं है, ये इतना शक्तिशाली नहीं है, मैंने जिस व्यक्ति को देखा है उसके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को देख के भगवान के साथ स्टैंडर्ड कंपेयरिंग कर रहा है, ये नहीं, नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। और इस तरह से परीक्षित महाराज का उदाहरण स्मरण का उदाहरण भी है, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्यों परीक्षित महाराज इतने महान भक्त बन गए, क्योंकि गर्भ में ही उनको अच्छा संस्कार मिल गया, भगवान का दर्शन मिल गया। पर हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि गर्भ में किसी ने ब्रह्मास्त्र हमारे माता पे छोड़ दिया और भगवान अंदर आए और हरि बोल, चिंता मत करो, मैं हूं, सुदर्शन लेके आया हूं। हम उतने सौभाग्यशाली नहीं है कि मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किए हो। पर अगर माता पिता बड़े ध्यान रखे तो बच्चे को जल्द से जल्द भगवान से मिला सकते हैं, उनका दर्शन करा सकते हैं। जितना जल्द उसकी बुद्धि समझ में आए उतना जल्द भगवान से मिला सकते हैं, और वो भगवान को देखने का जो इंप्रेशन है वो अगर हृदय में पड़ गया तो फिर जीव गोस्वामी भी कहते हैं पहला इंप्रेशन, शुरू में जो इंप्रेशन पड़ जाता है भगवान का, वो उसको एक भक्त बनाने में, महान भक्त बनने में मदद करता है। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पिता माता का ये कर्तव्य है कि शुरू से ऐसे संस्कार बच्चों को दे। प्रभुपाद जी उसके इसी के तात्पर्य में 30 नंबर का श्लोक जो है इसके तात्पर्य में लिखते हैं, मैं भी ऐसा एक सौभाग्यशाली भक्त था, ऐसा व्यक्ति था जिसको मेरे पिता ने, प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे पिता एक शुद्ध भक्त थे और उन्होंने छोटी उम्र में मुझे राधा गोविंद जी का एक छोटा विग्रह दिया पूजा करने के लिए, और मैं खेल खेल में उनकी पूजा करता था। बगल में राधा गोविंद मंदिर था, मैं मंदिर में जाता था और वहां पुजारियों को देखता था प्रेम से भगवान राधा गोविंद की सेवा करते हुए, और वो जो करते थे वो घर में आकर मैं उसका खेल 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 में अनुकरण करता था, और मेरे माता पिता मदद करते थे। मैं कहता था उनको कि मेरा एक बड़ा फेस्टिवल करना है, जन्माष्टमी है तो मेरे राधा गोविंद का फेस्टिवल करना है, चलो क्या चाहिए सब, ये लो आज मुझे रथ यात्रा करना है, ठीक है कब है, रथ यात्रा हो रहा है सब जगह, हम भी मुझे भी रथ यात्रा करना है, चलो ठीक है तुमको रथ बना के दे दिए, ये बना के दे दिए, प्रसाद बना के दे दिए, चलो पूरे कॉलोनी में करो रथ यात्रा। तो उस उनकी स्तर के अनुसार, उस बच्चे के स्तर के अनुसार, न केवल उनको डीटीज दिए मतलब विग्रह दिए, भगवान का दर्शन कराए और उनकी सेवा में यथाशक्ति लगाने में मदद की, फैसिलिटेट की। पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड स्कूल एंड कॉलेज एवरीथिंग वॉज सस्पेंडेड, सस्पेंशन, स्कूल कॉलेज में सब सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन नहीं डिस्पेंशन हो गया पूरा, क्योंकि वहां के जो कॉलेज थे वो ब्रिटिशर लोग थे, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, और वो चैलेंज करते थे भगवान भगवान नहीं है कुछ नहीं। पर फिर बाद में कहते हैं, जो संस्कार मुझे पहले मिली थी, फिर जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिला तो वही संस्कार जो पहले बने हुए थे, वो दोज प्लेफुल डीटीज बिकेम माई वर्शिपफुल लॉर्ड, इटर्नल वर्शिपफुल लॉर्ड। वो जो खेल कूद में मैं राधा गोविंद की सेवा करता था, वो मेरे प्राणनाथ इष्ट देव बन गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में, और प्रहलाद महाराज को भी कोट कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, महाजन प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि कुमार अवस्था में अगर ये संस्कार मिले कितना मदद करता है। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा लेकर पूर्णिमा तक धीरे 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 विकसित होते जाती है, इस तरह महाराज युधिष्ठिर के आश्रय में और उनके निर्देशन में परीक्षित महाराज के सारे लक्षण जो ब्राह्मणों ने कहा था वो एक्चुअली महाराज युधिष्ठिर के प्रेममयी निर्देशन में और उनके मदद से परीक्षित महाराज उस चंद्रमा के समान विकसित होते गए और उनके अंदर वो सारे गुण आते गए। परीक्षित महाराज का जन्म कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद ही हुआ था, कुरुक्षेत्र के रण के बाद, तुरंत बाद हुआ, थोड़े समय के बाद, क्योंकि उस समय गर्भवती थी उत्तरा। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद युधिष्ठिर महाराज पश्चाताप करने लगे कि मेरे कारण लाखों लोग सब मारे गए, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतना लोभी हूं, मेरे मुझे राज्य में बैठाने के, राज्य आसन पर, राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए इतना लोग मारे गए। तो उन्होंने, परीक्षित महाराज ने निश्चय किया, अरे युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया कि इसके प्रायश्चित के रूप में मैं 3 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और अश्वमेध यज्ञ इतना आसान नहीं है, इसमें आज के इसके अनुसार अरबों रुपये खर्चा हो सकता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्चा हो सकता है। पर कुरुक्षेत्र के रण में लड़ाई के कारण पूरा जो खजाना था युधिष्ठिर महाराज का खाली हो गया था, तो क्या करते, यज्ञ करना है पर फैसिलिटी नहीं है, पूरा राज्य जो क्या बोलते हैं कोष खत्म हो गया है, और जो भी वो जैसा ब्राह्मणों को सरकार के ओर से सब फैसिलिटी मिलना चाहिए, इसी तरह से क्षत्रिय जो है वो टैक्सिंग एंड फाइनिंग दो तरीके से कमाते हैं, राजा का खजाना जो भी होता है, 100 टैक्स के रूप में तुम्हारा इतना है, मैं तुम उसकी संरक्षण करूंगा, मैं तुम्हारे सारे धन का और सबका संरक्षण मेरा कर्तव्य क्षत्रिय, पर उसके लिए मुझे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स, और दूसरा था फाइन, अगर किसी ने गड़बड़ी किया तो फाइन लगाना। तो ये दो चीज के द्वारा राजा का खजाना था, और वो जो पैसा था वो सिर्फ राज्य का जो समृद्धि सब ठीक ठाक चलने के लिए जरूरी था, तो वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि मुझे यज्ञ करना है तो सब लोग भूखे लो रहो पूरे प्रजा, ऐसा भी नहीं, उनका कर्तव्य है। तो ये करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जो है, धन जो है, 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहां से लाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एक सुझाव दिया। बोले सुनो, कई साल पहले एक महान राजा थे जिनका नाम था महाराज मरुत, और वो इतने महान भक्त थे और अच्छी तरह से राज्य चला रहे थे, और यमराज को उन्होंने प्रसन्न किया और उससे प्रसन्न होकर उनको वरदान के रूप में एक हिमालय पर्वत का एक पर्वत जिसकी चोटी जो है पूरे सोने की बनी हुई है वो उनको दिया गया। बोले ये हम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, ये सोने का जो चोटी का पहाड़ है ये तुम्हारा। अब सोचिए, सॉलिड सोने का बना हुआ, और प्रभुपाद जी लिखते हैं आज भी वो है जो एडवेंचरस आदमी है जाके खोज सकता है। वो है पहाड़ कहीं कहीं तो है हिमालय में, कुछ तो एक वाइब्रेटर लेके जाओ और देखो अंदर किसी किसी इसके नीचे बर्फ के नीचे सोना मिल सकता है। तो महाराज मरुत के सोने की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे वो, और उस यज्ञों में यज्ञशाला के ऊपर जो छतरी बनाया जाता है वो भी सोने का था। आप सोचो, एक पूरी पहाड़ की चोटी सोने की बनी हुई। कभी कभी हम लोग ट्रेन से जाते रहते, एक छोटा सा पहाड़ देखते हैं, देखने में छोटा लगता है दूर से, और उस पहाड़ के नीचे थोड़ा सा जैसा चूहा काटता है ऐसा बड़े बड़े ट्रक लेके खोद रहे हैं पहाड़ के एक सौ ऐसे कोने में, और एक छोटा सा पहाड़ का इतना कोना निकला, हजारों ट्रक खड़े हुए उसमें लोड करके ले जाते। ये तो मिट्टी है या पत्थर है, और एक पहाड़ का छोटा अंश है, पर ये ऐसा छोटा पहाड़ नहीं था, हिमालय पहाड़ का एक पहाड़ था वो, और सॉलिड गोल्ड। क्या कमी है उस महाराज मरुत की। और कहा जाता है कि इतने अच्छे तरह से यज्ञ संपन्न करते थे, और यज्ञ में जितने सारे ब्राह्मण आते थे उनको न केवल बड़े बड़े मात्रा पे दान देते थे, बल्कि सोने के थाली, जो कुछ भी यज्ञ का सामग्री था वो सब सोने का बना हुआ था। हम लोग आचमन पात्र पीतल का, तांबे का लेते हैं, और कुछ बर्तन हो सके तो सिल्वर, मेन आइटम जो एकदम भगवान के पास जाने वाला है, नहीं तो स्टील का, और कुछ नहीं तो पेपर प्लेट में लेके रख देते बस, द्रोण में कुछ लगे, जो कुछ भी था सब सोने का बना हुआ था उनका। और ब्राह्मणों को भी दान दिए, और ब्राह्मणों ने सब यज्ञ यज्ञ संपन्न किया, और जितना अपना प्लेट में खाया वो सब कचरे में डाल के चले गए बस। जैसे हम लोग खाने के बाद पत्रावली फेंक देते ना, ऐसा उन ब्राह्मणों ने सारे सोने का एक जगह डाल के चले गए। मतलब सही ब्रह्म में ब्राह्मण थे वो लोग। अल्पतृप्त ठीक है, समो दमः तपः शौचम् क्षांतिर आर्जवम् ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो ऐसे ब्राह्मण थे, हमको क्या लेना देना, यज्ञ हो गया खाना खा लिए बस। महाराज मरुत ने वो सारे कचरे पेटियों को खाप करके फिर से नहीं लगाया उसको, को सोचिए अगर फेंक के चले गए, सोना है भाई उठा लो चलो, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो ब्राह्मण तो चले गए, क्षत्रियों ने, मतलब महाराज मरुत ने भी उसे वापस नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया उसे। तो आप कहेंगे उस राज्य के वैश्य जितने थे बोले अरे वाह, ब्राह्मण भी चले गए राजा भी उधर देख रहे चले गए, चलो ट्रक लगाओ पीछे सब लोडिंग करके ले जाओ। वो लोग भी नहीं आए, और वहीं का वहीं पड़ा रहा कचरे में। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, महाराज मरुत के राज्य में यज्ञ संपन्न होने के कारण सब अपने अपने स्थिति में इतने तृप्त थे, उनकी सारी जरूरतें पूरी थी कि उनको कोई चिंता ही नहीं थी। तो क्यों अननेसेसरी बोझा वो छोड़ के चले गए।
बोले अभी भी वो पड़ा हुआ है, पर तुम्हें अभी जरूरी है, तुम जाओ। और युधिष्ठिर तुम पूरे विश्व के सम्राट हो, इसीलिए तुम्हारा ही है वो, तुम्हारा ही संपत्ति है। और अभी तुम किस लिए करना चाहते हो यज्ञ? भगवान का गुणगान करने के लिए चाहते हो, तो उसके लिए तुम ले सकते हो। सारा जो है वो छोड़ के गए थे, वो चोटी के साथ जितना जितना मिलेगा सब कुछ लिया। तो उनके भाइयों को भेजा और उन्होंने धनंजय अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने सब इकट्ठा करके लाए। और युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया। तो इसमें एक सुंदर तात्पर्य है 34वें श्लोक। ये श्लोक कहता है तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधि त्रिभिस् भीतो यज्ञई समजजित हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कम से कम 3 पन्ना, 3 से ज्यादा पन्ना, 3.25 पन्ना तात्पर्य लिखते हैं यज्ञ के बारे में। कहते हैं अगर भयभीत पुण्यात्मा, महाराज युधिष्ठिर इतने बड़े पुण्यात्मा थे, वो धर्मात्मा थे, खुद धर्म के तत्व को अच्छी तरह से जानते थे, उनके महान मंत्री थे जो उनको मार्गदर्शन देते थे, ऐसे महान ब्राह्मण थे, साक्षात व्यास देव भी उनको मार्गदर्शन दिया करते थे, वो तो दूर की बात, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनको निर्देशन देते रहते थे, तो जो कुछ भी कर रहे थे शुद्ध भक्ति ही था। पर फिर भी युधिष्ठिर की भावना ऐसी थी कि नहीं, शायद भयभीत, मतलब हो सकता है कि मेरे में अनजाने जाने में कुछ पाप हो गया हो, और इसीलिए वो प्रायश्चित के रूप में मुझे ये 3 यज्ञों को करना बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण के लिए, उन पापों से बचने के लिए और जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण के हमेशा संपर्क में होते हुए भी इतने चौकन्ने थे, तो हमें कितना चौकन्ना होना चाहिए जो कलयुग के तुच्छ जीव हैं। और हमको लगता है क्या फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा, कितना हमको चौकन्ना होना चाहिए। और चौकन्ना होने का मतलब क्या है? यज्ञ सही तरीके से संपन्न होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। एक, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज उन्होंने क्या किया, भगवान को ही संभाल जिम्मेदारी दे दी। बोले ये देखो मैं धन ले आया हूं, अब प्रभु आप देखो कि ये 3 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो, और भगवान से कृष्ण के नेतृत्व में शुद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर ये 3 यज्ञ संपन्न किया गया। और भगवान को तो मालूम है, वो अंदर बाहर सबका एक्सरे जानते हैं, उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को लाया जो शुद्ध ब्राह्मण थे। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यज्ञ करते वक्त तो जो पुरोहित है उसके ऊपर पूरा यज्ञ डिपेंड करता है, वो कैसा है, वो माध्यम है ना वो, अगर वो ही ठीक नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगा यज्ञ। यज्ञ में जहां भी गड़बड़ी हुआ है वो उस व्यक्ति से हुआ है, जैसे त्वष्टा चित्रकेतु महाराज के इसमें भी हम देखते हैं, इंद्र ने यज्ञ किया तो बैठा था वो, पहले से उसका एजेंडा था ब्राह्मण बैठा हुआ था, पर उसने बोला मैं थोड़ा तो देवताओं को भी दूंगा, थोड़ा मैं दानवों को भी दूंगा, क्योंकि पार्शियलिटी था उसके प्रति, तो उसके लिए बहुत तकलीफ हो गया। तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला चीज है कि यज्ञ संपन्न होना जरूरी है। यज्ञ दान तपह क्रिया पावनानि मनीषी नाम, किसी स्थिति में ये हम तीन चीज छोड़ नहीं सकते, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषी नाम। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, अंग्रेजी बोलते हैं ना सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस हु व्हाट एंड फॉर हुम। सैक्रिफाइस का मतलब है एक व्यक्ति किसी और की प्रसन्नता के लिए अपना जो स्वार्थ है उसको त्याग रहा है, इसको कहते हैं सैक्रिफाइस। जैसा अगर एक व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, उस प्रेमी के प्रसन्नता के लिए अपना स्वार्थ को त्याग देना उसकी प्रसन्नता के लिए, जिसको हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कुछ त्याग देना, ये इसको कहते सैक्रिफाइस। तो यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो पहला पॉइंट लिखते हैं यज्ञ, बहुत सुंदर है ढाई पन्ना, और ऐसे तात्पर्य जो है वो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम की जो एक ये कथा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसा उतारना है, ये तात्पर्य के द्वारा वो कनेक्शन है। एक तो पुरानी कथा है और आज हमारी एक महाभारत चल रहा है यहां हमारा ये, तो ये दोनों को कनेक्शन देने वाला है तात्पर्य। नहीं तो अगर तात्पर्य के बिना, परंपरा के तात्पर्य के बिना ये पुरातन जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ही रह जाता है, वो कथा रह जाता है, वो एक मनोरंजन हो जाता है, सात्विक मनोरंजन हो जाता है बस। पर उस कथा को आज के हमारे जीवन की जो कथा है उसको कैसे जोड़ना, वो परंपरा से जुड़ता है तात्पर्य। और इस तात्पर्य में रूपा जी समझाते हैं पहला यज्ञ को करना मतलब परफॉर्मेंस डिफर्स बट द पर्पस रिमेन्स द सेम टू प्लीज कृष्णा। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। तो वर्णाश्रम अलग अलग वर्ण में, अलग अलग आश्रम में क्रियाएं अलग हैं। जैसे भगवान भी चौथे अध्याय में गीता में कहते हैं श्रोत्रांदीनि कर्माणि, तो ब्रह्मचारी जो है वो क्या यज्ञ कर रहा है, अपने श्रवण इंद्रियों को यज्ञ में आहुति डाल रहा है। आप बोलेंगे ये क्या है, यहां का स्वाहा बोल के कान तो नहीं डाल रहा, वो कान को यज्ञ में स्वाहा तो नहीं कर रहा है। नहीं, कान में हम हजारों चीज सुन सकते हैं, हम फिल्म म्यूजिक सुन सकते हैं, हम कुछ और भी सुन सकते हैं, उल्टी सीधी कथाएं सुन सकते हैं, पर बंद करके सिर्फ हरिनाम हरिकथा भागवत श्रवण स्वाहा, ये भी यज्ञ है। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, वी आर सैक्रिफाइसिंग हियरिंग एनीथिंग एल्स बाय हियरिंग ओनली कृष्ण कथा। श्रोत्रांदीनि संयमाग्निषु जुहुवति, संयम अग्नि, संयम की अग्नि में स्वाहा। हमारे पास समय है और उस समय में हम कई चीज सुन सकते हैं, पर उस सुनने की इंद्रियों को हमने श्रवण के अग्नि में, संयम अग्नि से जुहवती शब्दादीन विषयानन्य संयम इंद्रियाग्नि से जुहवती, शब्दादीन बोलने की शक्ति हमारे पास, ये मक्खन है घी है ना, घी को अग्नि में हम डालते हैं, ये घी की तुलना क्या है, हमारे पास बोलने की शक्ति है, उस घी को हमने यज्ञ में डाला या किसी और जगह डाला। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहवति। इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने भगवान की दी हुई चीजों को अग्नि में स्वाहा कर रहा है, स्वाहा स्वाहा। अब कौन से अग्नि में डाल रहे हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, यज्ञार्थात कर्मणः। तो कौन सी अग्नि, कृष्ण को प्रसन्न करना, पर अगर ध्यान पूर्वक नहीं किए तो कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भले बाहरी रूप से कोई गृहस्थ है वो कुछ और कार्य कर रहा है, ब्रह्मचारी कुछ और कार्य कर रहा है, एक वानप्रस्थ दूसरा कार्य कर रहा है, एक सन्यासी अपना कार्य कर रहा है, बाहरी रूप से सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर क्योंकि चारों का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न है, सोनुष्ठित से धर्म से संसिद्धिम हरितोषणम, उसकी परिपूर्णता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो वो एक्चुअली यज्ञ है, और अगर भगवान प्रसन्न हो नहीं हो रहे हैं तो यज्ञ में स्वाहा भी डाल रहे हैं पर वो यज्ञ नहीं है। जैसे मथुरा के ब्राह्मणों ने समझा, उन लोगों को समझ में आया, वो बेचारे स्वाहा कर रहे थे, डायरेक्टली यज्ञ में घी डाल रहे थे, स्वाहा कर रहे थे, और भगवान ने कुछ लोगों को भेजा और बोला भूख लगी है थोड़ा खाना, अरे स्वाहा, और उनकी पत्नियों ने सब चीज को स्वाहा कर दिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सब खाना बना रहे थे अच्छे अच्छे, वो यज्ञ के लिए सब बना रहे थे, पर जैसे कृष्ण बलराम से मैसेज आया कि वहां राह देख रहे हैं, भूखे हैं वो, हम भी ग्वाल बाल भी भूखे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता की इस अग्नि ने सब कुछ लेके स्वाहा कर दिया और एक्चुअली भगवान प्रसन्न हो गए, और ये ब्राह्मण अपने आप को कोसने लगे, धिक हमारा जन्म धिक्कार हो, हमारा कर्म धिक्कार हो, हमारे यज्ञ का उच्चारण धिक्कार हो, हमारे घी का धिक्कार हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मुंह काला कर रहा है, बस इसमें से धुआं निकल के हमारा मुंह काला कर रहा है, सच के गले में पड़ी माला, झूठों का मुंह हुआ काला। तो गोपियां चली गई, उनका जीवन सफल हो गया, और ये यज्ञ करने वालों का मुंह काला। तो प्रथम चीज है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, और दूसरा, परफॉर्म केयरफुली एंड करेक्टली। भगवान ने ऐसे ब्राह्मणों को चुना जो न केवल शुद्ध थे और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, पर बड़े ध्यान पूर्वक और सही तरीके से। यह दूसरा चीज है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो उसे ध्यान पूर्वक और सही तरीके से करना है, क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो स्वाहा करते करते इधर कहीं डाल दिया, तो यज्ञ में हवन में डालने के बदले बगल वाले ब्राह्मण की धोती के ऊपर घी डाल दिया स्वाहा, तो यज्ञ तो सफल नहीं होगा, उसका भी शाप मिल जाएगा, वो भी गाली देगा, क्या किया तूने, मेरा धोती बर्बाद कर दिया, यज्ञ के लिए नया धोती पहन के आया था मैं। तो ध्यान पूर्वक एंड करेक्टली, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं हुआ उल्टा असर पड़ जाएगा। और तीसरा, प्रभुपाद लिखते हैं, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम वजीर। इस कलयुग में बार बार हर जगह ही प्रभुपाद यही लिखते हैं, बोले ये यज्ञ नहीं कर सके, वो कर नहीं कर सके, नहीं सके चलेगा, सबसे बड़ा यज्ञ है इस कलयुग में, सबसे चीप इजीली अवेलेबल, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, संग में आकर कीर्तिगान करना भगवान का, ये एक्चुअली युग धर्म है। दुर्भाग्यवश हम इसे ध्यान पूर्वक और सही तरह से नहीं करते, इसीलिए कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, और कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो हम कैसे प्रसन्न होंगे। तो यज्ञ चल रहा है पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मे नॉट बी सीन। एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा द होल मैनेजमेंट इन इस्कॉन इज सिंपली टू फैसिलिटेट हियरिंग एंड चैंटिंग। गिरिराज महाराज को उन्होंने बताया, गिरिराज महाराज बताए, बोले द पर्पज ऑफ होल मैनेजमेंट इज हाउ टू मैनेज, इतना अच्छा से मैनेजमेंट करो कि श्रवणम और कीर्तनम अच्छी तरह से हो सब लोगों के लिए, खास लोग जिन लोग भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रामाणिक लोग आए हुए हैं, उनका श्रवणम और कीर्तनम अच्छा से चले। ये कैसा चले इसके लिए जो जरूरी है करो, वो मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि सब लोग सही तरह से श्रवणम कीर्तनम चल रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास हुआ और उसके चक्कर में श्रवणम ही मिस हो गया, कीर्तनम मिस हो गया, कुछ गड़बड़ी है, और श्रवणम कीर्तनम हो रहा है, पूरा मैनेजमेंट नहीं हुआ, सब सब शरणम कीर्तनम हो गए, प्रसाद हुआ क्या? प्रसाद नहीं, सब लोग यही कीर्तन कर रहे थे, तो वो भी मैनेजमेंट नहीं, और सब मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास किया, सब तैयार है, पर कीर्तन कर रहे, कीर्तन होता नहीं, अभी मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास बनना चाहिए सब कुछ। तो उसके लिए अगर ये कॉम्प्रोमाइज किया, वो एक अति हो गया, और श्रवणम कीर्तनम, दिव्य श्रवणम कीर्तनम, किसी का खाना नहीं, कभी भी शुरू हुआ कभी भी खत्म हुआ, तो फिर तो वो भी तकलीफ है। तो प्रॉपर बैलेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब श्रवणम कीर्तनम फर्स्ट क्लास हो, और बाद में सब कुछ तृप्त, सब लोग अच्छा से प्रसाद खा के आ, बहुत अच्छा चलता हूं, हमको आने जाने में समय मिलता है, हमको खाने को भी आराम से समय मिलता है, और हरिनाम भी सुने, कीर्तन भी किए, हरि बोल, बहुत अच्छा है, दिस इज मैनेजमेंट। इतना आसान नहीं है वो, क्योंकि हर एक 50 प्रकार के लोग हैं, आपकी अलग अलग डिमांड है, बट दिस इज मैनेजमेंट, थैंकलेस जॉब ऑफ मैनेजमेंट। करो तो भी गाली, नहीं करो तो भी गाली, पर गाली खाते, गाली तो खाना ही है वैसे भी, पर पूरी ताकत लगा कुछ तो करो। तो कीर्तनादेव कृष्णस्य, नहीं तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी समझ लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, कुकिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये अभी भी 8:30 सॉरी मैं घड़ी देख के मैं बोल रहा हूं, वाह आज और आधा घंटा 10 मिनट के बाद देख रहा हूं, बात ये सही में गोलोक वृंदावन है, यहां समय हिलता भी नहीं, 8:30 में ही रुक गया, घड़ी भी कृष्ण कथा सुनकर स्तब्ध हो गया। धीर समीर, वृंदावन में एक जगह है धीर समीर, धीर समीर मतलब भगवान ने जब मुरली बजाई तो जो हिलने वाले थे गाय और बछड़े और हिरण वो सब रुक गए, और जो स्तब्ध थे वो हिलने लग गए, पत्थर पिघलने लगा, ये कृष्ण कथा का महिमा। जो हिलने वाले रुक जाते और रुकने वाले हिलने लगते। तो ये हिलने वाले रुक गए, अभी सेकंड और मिनट हैंड रुक गया। एनीवे तो ये मेरे दोष नहीं है, अभी मैं खत्म कर दें। तो आप अगर अच्छे तरह से भगवान को भोग लगाने के लिए खाना मार्केट गए, 8 घंटा वो खर्चा करके सब कुछ अच्छी चीजें इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाए और अच्छे तरह से फर्स्ट क्लास भोग बनाया, सब कुछ बनाया, और ये सब करने के बाद इतनी थक गए कि किचन में ही सो गए, ऑफरिंग का टाइम आया, ऑफरिंग चलेगा, ऑफरिंग का टाइम भी चला गया, भगवान आए दर्शन किए वो भी चले गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? जिनकी प्रसन्नता के लिए पूरा चीज किया, जब समय आया एक्चुअली ऑफरिंग का, उस समय आप सोए थे, कोई अतिथि कोई आ रहा है आपके घर में 3 दिन के बाद आने वाला है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अतिथि, और उसके लिए आप पूरे दिन भर 3 दिन बिना सोए बिना खाए पिए सब इंतजाम कर रहे हो, और जब वो एक्चुअली आया तब आप इतने थके हुए थे कि जाके सो गए, और वो आया बेचारा दरवाजा खटखटाया, प्रभु दरवाजा खोलो, ऐसा हो गया। तो जो भी तैयारी है, अंततः अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को अर्पण करने का समय है हियरिंग एंड चैंटिंग, ये श्रवण कीर्तन जो है हमारा, पूरा दिन भर जो हम कार्य कर रहे हैं उसको ऑफरिंग करने का समय है ये कीर्तनम का और श्रवणम का, पूरा दिन हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं पर कृष्ण को ऑफरिंग करने का समय आया, नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सही ब्राह्मणों को चुनकर 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, और तत्पश्चात भगवान पूर्ण रूप से अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ के आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं, तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। ये यज्ञ के बाद थोड़े समय तक भगवान हस्तिनापुर में ही ठहरे, युधिष्ठिर महाराज और जितने सारे उनके रिश्तेदार थे उनको प्रसन्न करने के लिए। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। तो अगले बार 13वें अध्याय से शुरू करें।